राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रविवार के कार्यक्रम में। पिछले गुरुवार को शिवरात्रि का महोत्सव था, तो हमने सोचा और कुछ भक्तों ने भी काफी भगवान शिव जी के विषय में प्रश्न पूछे थे, तो हमने सोचा कि आज का हमारा रविवार का कार्यक्रम हम भगवान शिव जी इनकी महानता जानने में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी, इनके विषय में कई शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है और इनकी महानता इतनी है कि जैसे हम जब कृष्ण के गुण के विषय में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गुण असंख्य हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव जी इनके भी गुण असंख्य हैं। तो हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में, जहां पर भगवान शिव जी का गुणगान किस तरीके से हुआ है। हालांकि शिव तत्व जो है वो इतना आसान नहीं समझना, क्योंकि भगवान शिव जी न तो वो हमारी तरह कोई जीव है और न ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्तर पर अपने आप को रखते हैं। तो शिव तत्व इन दोनों के बीच में है और अलग है शिव तत्व। जैसे अन्य जो देवता हैं वो सब उपाधियां हैं, देवतागण जो हैं उनकी केवल उपाधियां हैं, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण इत्यादि, परंतु शिव जी ये कोई उपाधि नहीं, ये स्वयं एक व्यक्ति हैं और इनका अलग से अपना एक तत्व है, शिव तत्व जिसे कहते हैं। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में शिव जी का गुणगान करते हुए वो कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। वो कहते हैं कि भगवान विष्णु में और भगवान शिव जी में समानताएं क्या है और भिन्नताएं क्या क्या है। तो बहुत सुंदर उदाहरण से वो बताते हैं कि जैसे दूध में और दही में, दूध और दही इसके विषय में यदि पूछा जाए तो क्या वो एक हैं या अलग। दूध और दही एक है या अलग है। दूध दही जानते हैं। दूध और दही एक है या अलग है। अलग है। किस दृष्टिकोण से अलग है। किससे। स्वाद से। और क्या अलग है उसमें। रंग एक जैसा है ना, रंग एक जैसा है। एक और चीज अलग है दूध और दही में कि जो वस्तुएं दूध से बन सकती हैं वो दही से नहीं बन सकती, और जो वस्तुएं दही से बन सकती हैं वो दूध से नहीं। जैसे क्या? लस्सी। लस्सी बनती है दही से, और दूध से पेड़ा। बासुंदी। तो दूध से बासुंदी, दही की बासुंदी खाई कभी? नहीं आता ना। तो खीर या बासुंदी ये सब दूध से बनता है। अब हालांकि इन सब कारणों के वजह से दूध और दही ये अलग है, परंतु दही ये बना कहां से? दूध से ही बना। यदि दूध नहीं होता तो दही कैसे बनता? अक्सर दही की परिभाषा दी जाती है कि दही है क्या? रात में सोया हुआ दूध जो सुबह जम जाए वो है दही। परंतु केवल वो सोया हुआ दूध नहीं है, बल्कि उस दूध में कुछ विकार डालना पड़ता है। आपकी भाषा में उसे कहते हैं विरजण। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो जब वो विरजण डालते हैं रात में और जब उस दूध को सुलाते हैं तो सुबह उसी दूध को हम क्या पाते हैं देखते हुए? दही बन गया, जम जाता है। अब भगवान विष्णु और शिव जी, इनमें से दूध कौन है, दही कौन है? अब ये प्रश्न पूछेंगे। हाँ, भगवान शिव जो हैं वो दही हैं, और जो दही दूध से बना है भगवान श्री विष्णु वो हैं दूध। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। तो दोनों में एक दृष्टिकोण से अंतर नहीं, परंतु ये अंतर एक विशेष है कि बिना दूध के दही नहीं बन सकता। तो शिवजी या शिव तत्व वो निर्भर है विष्णु तत्व पर, जैसे दही का बनना निर्भर है दूध के ऊपर। और श्रीमद् भागवत में तो शिव तत्व के विषय में कहा गया है, शिवजी के विषय में कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, कि भगवान शिवजी वो सभी भगवान विष्णु के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु के भक्तों को कहा गया है वैष्णव, तो सभी वैष्णव में श्रेष्ठ हैं शिवजी। और चूंकि वो अपने आप को भी एक भगवान का भक्त ही मानते हैं, तो भगवान शिवजी को पूर्ण पुरुषोत्तम कहना ये उनको नाराज करने की तरह है। ये ऐसा हुआ कि मानो कोई व्यक्ति किसी का सेवक है और किसी सेवक को मालिक कहकर कोई पुकारेगा, तो यदि वो प्रामाणिक सेवक होगा तो उसे वो रास नहीं आएगा। आप किसी के बंगले में जा रहे हो और उस बंगले का जो मालिक है वो मालिक कहीं सामने दिख नहीं रहा, परंतु मालिक का सेवक दिख रहा है, तो यदि आप सेवक को मालिक मालिक बोल रहे हो तो यदि वो प्रामाणिक सेवक होगा तो उसे वो अच्छा नहीं रहेगा। और अप्रामाणिक होगा तो बहुत खुश होगा। अरे किसी ने तो मुझे मालिक कहा। परंतु यदि भगवान शिव वो सबसे प्रामाणिक वैष्णव हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता सबसे ज्यादा है जब कोई उन्हें उनकी जो प्रामाणिकता है उनकी सेवा भाव उसमें जब उन्हें पहचानता है तो उसमें उन्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो हालांकि ये सारे गुण तो हैं, परंतु हम कुछ एक गुण ले रहे हैं आज के हमारे इस प्रवचन में भगवान शिव जी के। और तीसरे स्कंद में एक वैष्णव या साधु के गुण बताए गए हैं। तो यदि साधु के गुण बताए गए हैं तो हम देखना चाहेंगे कि जो परम वैष्णव परम साधु हैं शिव जी, वो कैसे इन साधुओं के गुणों को सही सही दर्शा रहे हैं अपने चरित्र में। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद से, जिसमें एक साधु के कौन कौन से गुण होने चाहिए ये बताया गया है। तो इनमें से हम एक एक गुण लेंगे और भगवान शिव जी के चरित्र में देखेंगे कि कैसे ये सारे गुण भगवान शिव जी में पाए गए हैं, न केवल साधारण तरीके से बल्कि उत्कृष्ट तरीके से। तो पीछे दोहराइए, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव शान्ताः साधव साधु भूषणाः। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव शान्ता साधव साधु भूषणा। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रव शान्ता साधव साधु भूषणा। साधु को विभूषित करने वाले गुण यह हैं कि वह सहनशील, दयालु और सभी जीवों के प्रति मित्रता रखने वाला होता है। उसके कोई शत्रु नहीं होते, वह शांत होता है और शास्त्र के नियम अनुसार चलता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ये सारे जो गुण तितिक्षा, करुणा, अजात शत्रव शांत साधव, ये सारे जो गुण हैं दयालु, ये सारे जो गुण हैं ये एक साधु के आभूषण हैं। कोई मनुष्य समाज में अपने आप को सुंदर बनाने हेतु कुछ आभूषण अपने शरीर पर लगाता है, तो आभूषणों के कारण व्यक्ति की सुंदरता बढ़ती है। परंतु यदि कोई साधु वो यदि अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहे तो कौन से आभूषण उसे लगाने होंगे जिसके द्वारा वो अपनी सुंदरता बढ़ा सकेगा। ये सारे आभूषण हैं, तितिक्षा, कारुणिका, सुरदह और अजात शत्रु, शांत साधव, ये सारे आभूषण, और इनके द्वारा वो साधु सुंदर दिखता है। तो अब यदि भगवान शिव वो परम वैष्णव हैं, परम साधु हैं, तो भगवान शिव के अंदर ये सारे साधु के जो आभूषण हैं वो प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। जैसे कि कोई यदि डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, तो यदि उसके पास वो डिग्री है तो उसे भेंट होने पर ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि यदि ये डॉक्टर है तो दवाइयों के विषय में, बीमारियों के विषय में, इलाज के विषय में जानता होगा। कोई इंजीनियर है तो वो अपने विषय में, इंजीनियर सब्जेक्ट के विषय में वो जानता होगा। तो यदि हम भगवान शिव जी को परम साधु या परम वैष्णव कह रहे हैं तो देखना होगा कि क्यों उन्हें कहा गया है परम वैष्णव। अक्सर भारत में हम देखते हैं कि जब भगवान शिव जी की चर्चा होती है तो ये सारे गुण कोई ज्यादा देखने का प्रयास नहीं करता उनके अंदर। शिवरात्रि के दिन ज्यादातर होता क्या है, ज्यादा जानते होंगे आप लोग, शिवरात्रि के दिन क्या होता है? देखिए स्वाभाविक रूप से क्या निकल रहा है, भांग। कि अक्सर लोग उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, या फिर आजकल तो खैर वो भी इतना नहीं, छुट्टी। हमको न तो शिवजी से मतलब है न शिवरात्रि से मतलब है, छुट्टी। छुट्टी मिली है, छुट्टी होती है ना। या फिर शिवजी के मंदिर में जाकर, क्योंकि वो आशुतोष हैं, आशुतोष का अर्थ है कि बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, आशु का अर्थ है जल्द और तोष का अर्थ है प्रसन्न होना, तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनसे कुछ मांग लेना फायदेमंद हो है। उन्हें प्रसन्न और किससे उनको प्रसन्नता मिल जाती है, एक बेलपत्र, कुछ जल और कुछ दूध, वो भी शुद्ध दूध भी जरूरत नहीं है, दूध वाला जो पानी मिला कर देता है वो भी चलेगा, वो और कुछ बेल पत्र, बस इतना कुछ अर्पित करने पर हमें जो चाहिए वो सब कुछ। देखिए इतना सा बेल पत्र, क्या खर्चा है बेल पत्र में, कुछ खर्चा नहीं उसके अंदर, वो तो सब फुकट में मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट में कुछ खर्चा नहीं परंतु रिटर्न इतना। तो अर्पित कोई व्यक्ति करता है बेल पत्ता, परंतु उसके साथ दूसरा पत्ता मांगता है। तो यदि भगवान शिवजी ये कहें कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि तुमने मुझे बेल पत्ता अर्पित किया तो मैं भी तुम्हें बेल पत्ता देता हूं, तो कोई नहीं जाएगा फिर, तो बेल पत्ता के बदले दूसरा पत्ता मांगते हैं, 10 का रुपया, 10 का, 50 का, 100 का पत्ता, 500 का। रेट बढ़ते जा रहा है, कलयुग बढ़ रहा है ना, तो उसमें रेट बढ़ते जा रहा है। परंतु शिवजी के गुण हमें शास्त्र पर आधारित देखने हैं कि उनके गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस श्लोक का पहला गुण लें साधु का, तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ क्या है, सहनशीलता। सहनशीलता ये शिवजी के अंदर हम देखते हैं समुद्र मंथन लीला में, जब देव और असुर वो एकत्रित हुए समुद्र मंथन करने, कौन सा समुद्र, क्षीर समुद्र, क्षीर सागर, और प्रयोजन क्या था कि अमृत चाहते थे वो दोनों, ताकि अमर बन सके। तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में ये कथा है, जब देव और असुर ये एकत्रित होते हैं समुद्र का, क्षीर सागर का मंथन करने, और क्षीर सागर का मंथन वो प्रारंभ करते हैं, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर और वसु की सर्प को वो रस्सी बनाकर, और इस प्रकार से जब मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले हलाहल विष उसमें से उत्पन्न होता है। तो अब हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं था। वो ये जो अब हम भौतिक संसार में अलग अलग जगहों पर विष के विषय में सुनते हैं, विष सब जानते हैं ना, हिंदी का जहर। तो ये जो जहर, जैसे सर्पों में जहर पाया जाता है और बिच्छू में कुछ जहर की मात्रा होती है, तो ये सभी प्राणियों में और कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी ये जहर या विष दिखने को मिलता है, ये सब की उत्पत्ति हुई इस हलाहल विष से जो कि उस मंथन से बाहर आया, ये हलाहल विष। तो अब ये हलाहल विष जो बाहर आया तो दोनों देव और असुर वो परेशान की हम तो अमृत की खोज में निकले और अमृत की खोज करते करते ये विष बाहर आ रहा है। तो आचार्य बताते हैं कि हमारी जो साधना भक्ति है वो भी इसी प्रकार से है कि जब हम साधना में लगते हैं तो हमारा प्रयोजन है कि भक्ति रसामृत, भक्ति का रस का अमृत हमें मिले। जैसे देव और असुर अमृत की तलाश में मंथन कर रहे थे, तो हम भी हमारी साधना भक्ति में जब हमारे हृदय का मंथन करते हैं तो हम उस हृदय के मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम अमृत। परंतु सबसे पहले अमृत के बदले निकलता क्या है, विष, जहर। और ये हमारे जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, ये जहर के समान पहले भभक कर बाहर निकलते हैं सारे अनर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अंदर ही थे, जब इनका मंथन हुआ तब ये बाहर आने लगे। तो अक्सर जब हम साधना में लगते हैं तो शुरुआत में ये जहर की अनुभूति होती है तो हम इन देव और असुर के समान डर जाते हैं। जैसे ये लोग डर गए, भयभीत हो गए और इन्होंने अपना मंथन रोक दिया कि ये पता नहीं शुरुआत में ही हलाहल विष निकल रहा है तो पता नहीं आगे और क्या क्या निकलेगा। ये तो सैंपल ही इसी से है शुरू। तो वो लोग रुक गए, मंथन करना बंद, क्योंकि अब अमृत की तलाश में, अमृत को क्यों पाना चाहता है, ताकि वो अमृत, वो मृत्यु के परे जा सके, अमर बन सके। और यहां पर सबसे पहले उनके मरने के लिए विष पैदा हो गया। तो अक्सर हमारी साधना भक्ति में भी हमारी परीक्षा इसी समान होती है कि हम चाहते हैं शांति सुकून और सुख, आध्यात्मिक सुख, परमानंद, ये सारे शब्द पहले ध्यान में रखते हैं जब हम भक्ति में आते हैं कि मैं भक्ति में आऊंगा तो मुझे परमानंद मिलेगा, मुझे सुख शांति निर्वाण, ये सारे शब्द पहचानते हैं आप लोग। तो इन सब की खोज में हम अपनी साधना में लगते हैं परंतु पाते कुछ और हैं। पाते हैं कि काम क्रोध लोभ, और हरे कृष्ण के प्रवचनों में तो गीता कोर्स ले लो या संडे फीस्ट का क्लास ले लो, उसके अंदर केवल दुखहाल है, अनर्थ, और इनके विषय में ही बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से इन सब के विषय में बताया जाता है। और केवल ये बताया नहीं जाता, हम अनुभव भी करते हैं। फिर हमारी साधना भक्ति में हम अनुभव करते हैं ये सारे अनर्थ, जो कभी हम इनके विषय में सोचे भी नहीं थे, हालांकि इसी के अंदर थे, इसी के अंदर रचे पचे थे हम सभी अनर्थों के अंदर, परंतु कभी सोचे नहीं थे कि ये हमारे ही सगे संबंधी हैं, हमारे ही रिश्तेदार और हमने इनसे संबंध स्थापित किया है। परंतु फिर साधना भक्ति में आने के पश्चात हमें दिखाया जाता है, देखो ये तुम्हारा संबंधी नहीं, ये काम तुम्हारा शत्रु है, ये क्रोध तुम्हारा शत्रु है। तो ये विष के समान जब प्रतीत होता है हमें, तो अक्सर हम हताश होकर सारे शस्त्र छोड़ देते हैं युद्ध के, हताश होकर, नहीं नहीं इससे आगे हमें मुझे और अपने आप को परेशान नहीं करना। तब उस विष को हम अपनी शक्ति से नहीं पराजित कर सकते। तो करना क्या है हमें, जैसे इन दोनों असुर और देवों को बताया गया क्या करना था उन्हें, एक परम वैष्णव की शरण ग्रहण करनी शिव जी की। तो ये गए शिव जी के पास और शिव जी ध्यानस्थ कैलाश धाम में, भगवान शिव जी वो हर समय भगवान श्री विष्णु संकर्षण इन पर अपना ध्यान लगाए हुए रहते हैं। और इनकी मुद्रा भी यदि आप देखो तो एकदम शांत सुशील मुद्रा होती है शिव जी की। तो अब ये देव और असुर जब वहां पहुंचे कैलाश धाम, तो वहां पर ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिलने गए थे शिव जी से, चलो मिलकर आते हैं कैसे हैं शिव जी। और भगवान शिव जी जानते हैं कि जब भी कोई उनसे मिलने आता है तो ऐसे ही मिलने नहीं आता, कोई कारण होता है कि कुछ चाहिए, कुछ दुख आ गया उसका निवारण, ये सब कुछ। अब देखिए कि आप किसी से मिलने जाओ और वो भी भगवान शिव जी जैसे महादेव से मिलने जाओ और उन्हें जाकर क्या प्रस्ताव सामने रखो कि आप थोड़ा नीचे आकर आपके लिए हमने एक ड्रिंक बनाया है, एक पेय आपके पीने के लिए, हम चाहेंगे कि आप इसे पिए। कौन सा पेय? हलाहल। तो सोचिए कि कोई हमारे पास यदि ऐसे आए और वो भी हमें जानता हुआ हमारा कोई संबंधी या मित्र आकर हमसे कहता है कि कृपया करके थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड मेरी प्रसन्नता के लिए पी के दिखाओ। तो यहां पर भगवान शिव जी देखिए इतने कृपालु सहनशील, ये गुण यहां पर हम देख रहे हैं तितिक्षवः, कि न केवल शारीरिक रूप से, क्योंकि शिव जी ही केवल एक व्यक्ति थे पूरे ब्रह्मांड में जो इस हलाहल विष को पचा सकते थे, और कोई नहीं था। हालांकि विष्णु तो स्वयं वो कर सकते थे, परंतु भगवान शिव जी का गुणगान करने हेतु इन्होंने देव और असुर को वहां भेजा। तो शारीरिक रूप से विष को, और वो भी हलाहल विष को पीने में सहनशीलता होनी चाहिए। कई बार कई दवाइयां होती हैं जो हमें लेनी होती है हमारी बीमारी के लिए, ये आयुर्वेदिक काढ़ा जो होते हैं ये बहुत कठिन होता है इन्हें लेना, और जब भी ये समय आता है इसको लेने का तो हमारी जान पर आती है ना, अरे आ गया समय। मुझे अनुभव है कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति, उनको कुछ हो गया था तो उन्हें ये आयुर्वेदिक काढ़ा दिया था पीने के लिए, तो उस आयुर्वेदिक काढ़ा के साथ वो गन्ने का जूस रेडी रखते थे, जैसे ही वो पिया तो गन्ने का जूस उसके साथ अंदर। तो ये जो दवाइयां होती हैं, ये दवाइयां जब कड़वी होती हैं, परंतु जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं वो बहुत मीठी बनाते हैं ये लोग, जैसे कि कोई भी कफ सिरप है ये सबको वो लोग मीठा बनाते हैं ताकि उसमें लेने में भी आनंद आए और उसमें थोड़ा नशा भी आता है। तो कई बार लोगों को खांसी भी नहीं है तो बोतल भर भर के उसको पीते रहते हैं आजकल लोग। तो जब पूछा जाए कि भाई इतनी खांसी की, इतना बोतल ले रहे, अभी क्या करें, कलयुग है। और ये शरीर जो है व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर, इतनी सब बीमारियां होती हैं, परंतु कारण कुछ और होता है उसे लेने का। तो सोचिए यहां पर शारीरिक रूप से सहनशीलता भगवान शिव जी ने दिखाई उस विष का पान कर, और आंतरिक रूप से कि यदि कोई व्यक्ति आ रहा है इस हेतु से कि जहर पिलाने हेतु, परंतु भगवान शिव जी उनके प्रति ऐसा नहीं कि रुद्ध होकर और क्रोध अवस्था में लाओ लाओ इधर लाओ, तुम्हें कुछ और सूचता नहीं, केवल विष लेकर आते हो मेरे पास, बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए भगवान शिव। उनके प्रति कृपा भावना की, इन्हें यदि अमृत चाहिए तो इन्हें अमृत। और ऐसा नहीं भगवान शिव जी ने कहा कि मेरा कमीशन क्या है कि ये विष पीने के लिए तुम कह रहे हो तो उसमें से जो अमृत मिलेगा, ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी ने अपना कुछ परसेंटेज अमृत का बुक कर लिया। अमृत सब तुम्हारा, परंतु विष वो भगवान शिव जी ने लिया, और वो भी उन्होंने अपने गले में उसे अटका कर रखा है, और गले में उन्होंने अटका कर रखा तो उनका पूरा जो गला नील वर्ण का हो गया, इसलिए उन्हें नाम भी मिल गया नीलकंठ। तो अब सोचिए, हालांकि नाम बहुत अच्छा लगता है नीलकंठ, सुनने में बहुत मधुर नाम है, परंतु इसके पीछे जो लीला है वो थोड़ी भयावह है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी शिवजी का अनुकरण करना चाहते हैं, और अनुकरण कैसा करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन या शिवजी की प्रसन्नता हेतु ये नशा वो नशा। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि उससे पहले थोड़ा विष पीना, ये इसका अनुकरण करना शुरू करो, तब जाकर हम कह सकेंगे कि ठीक है तुम्हें अनुमति है वो करने की भी। तो इस लीला में हम देखते हैं कि भगवान शिव जी बाहरी और आंतरिक रूप से कैसे वो उन्होंने अपनी सहनशीलता दिखाई। तितिक्षवा कारुणिका, इनके अंदर इतनी करुणा भावना है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति भगवान शिव जी के शरणागत होते हैं, जैसे ये एक असुर जिसका नाम था वृकासुर, और ये वृकासुर भगवान शिव जी की आराधना कोई अहितु की भाव से नहीं कर रहा था। ये वृकासुर भगवान शिव जी की आराधना ऐसी भावना से कर रहा था कि यदि आपको पता लगेगा तो उसकी भावना जानने से कोई व्यक्ति उसे वहीं पर खत्म कर दे। कि सबसे पहले तो इसकी आराधना किस प्रकार की थी कि ये वृकासुर एकदम तमोगुण में स्थित, और इसने ऐसी तपस्या प्रारंभ की भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और इसके अनुसार ये सोच रहा था कि भगवान शिव जी इससे प्रसन्न होंगे। इसने अपने सामने एक आग जलाई हुई, हवन जैसे अग्नि जलाई ली, और फिर अपने शरीर का चमड़ा निकाल निकाल कर उसमें डाल रहा है शिव जी के नाम पर। अब सोचिए इस प्रकार की कोई तपस्या कि कोई हमें प्रसन्न करने के लिए यदि कोई ये सब कार्य करना लगे कि हमारे नाम पर आहुति डाल रहा है, और वो भी किसकी, अपनी चमड़ी निकाल निकाल कर। हालांकि अक्सर इस संसार में हम देखते हैं कि ऐसी तपस्या बहुत से लोग कर रहे हैं। वृकासुर वो अपनी चमड़ी निकाल निकाल कर उसमें डाल रहा था, तो आजकल पैसे कमाने के लिए भी लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, अथक परिश्रम, और हिंदी में एक कहावत भी है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दमड़ी किसे कहते हैं? रोकड़ा। तो दमड़ी न जाए, कोई चमड़ी हमारी उखाड़ कर छीन कर ले ले, परंतु वो नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के लोग भी वृकासुर के वंशज हैं। तो वृकासुर भी यही कर रहा था, अपनी चमड़ी निकाल निकाल कर डाल रहा। तो शिव जी परेशान की, मिलकर भी कौन मिला मेरा भक्त ये? तो परेशान की, अब ये क्या क्या चाहता क्या है, किस हद तक ये जाएगा? तो वृकासुर इस हद तक कि वो चमड़ी निकाल निकाल कर उसने देखा कि अब तक शिव जी आए नहीं, प्रकट नहीं हुए, तो अपना सर काट कर डालने के लिए तैयार हो गया। तब फिर शिव जी वहां पर प्रसन्न होकर नहीं, केवल इसे रोकने के लिए और इसे क्या चाहिए इसके ऊपर थोपने के लिए आए। तो जैसे वहां पर पहुंचे तो वृकासुर तुरंत वो शिव जी से पूछता है कि हाँ तो आप तैयार है ना? ऐसा नहीं कि दंडवत कर कुछ प्रार्थना करें शिव जी से कि आप महादेव हैं, क्या क्या आप हैं, गुणावतार हैं, कुछ नहीं। सीधा जैसे कोई व्यक्ति दुकानदार के पास जाता है, पैसा रखता है, माल दो, तो वैसे वृकासुर उसने अपना पैसा रख दिया पहले और फिर अभी तुरंत जैसे शिव जी आए माल निकालो। तो देखिए वर भी क्या मांगता है। तो शिव जी ने पूछा कि भाई इसे तो पहले रोको और तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों कर रहे हो ये सब। तो देखिए इतनी तपस्या उसने की और मांग कर भी क्या मांगता है ये वृकासुर, कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रख दूं अपना, उसका सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। हेलो, इतनी तपस्या करने के बाद ये वर मांगा उसने। तो शिव जी वो सोचने लगे कि भाई क्यों क्यों किसी के सर को टुकड़ा टुकड़ा तुम करना चाहते हो? तो यहां पर वृकासुर वो खुद के सर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए राजी था, परंतु किस लिए, हेतु क्या था? ताकि वो दूसरों के सरों को टुकड़ा टुकड़ा कर सके, और वो भी कोई और नहीं, वो भी किसके, शिवजी के ही, जिनको उन्होंने आराध्य देव बनाया, अपने ही आराध्य देव के सर को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए उन्हीं से वर मांगा ये प्रकाश। और वो भी क्यों क्यों शिवजी को मारना चाहता था ये वृकासुर? क्योंकि फिर उसने कहा कि आपकी जो पत्नी है उनका भोग मैं करना चाहता हूं, और आपकी पत्नी में और मेरे अंदर एक ही अवरोध है और वो है आप। तो उसने जैसे ही ये वर उसे मिल गया, अपना हाथ आगे कर लिया, हाथ आगे कर लिया कि अब बस शिवजी को, आप ही को मुझे खत्म करना है। तब शिवजी ये सब कुछ सुनने के पश्चात वो आश्चर्यचकित रह गए, और शिवजी फिर अपने आप को इस वृकासुर से बचाने के लिए भागने लगे। हालांकि शिवजी वो पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, तो क्या इस ये जो अभी अभी पैदा हुआ वृकासुर इसका संहार नहीं कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। परंतु यहां पर भगवान शिव जी वो इसका संहार स्वयं नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ही इसे वर दिया, उनके अंदर शक्ति थी। तो भगवान शिव जी भागने लगे और रास्ते में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें जाकर क्षमा उनको जाकर कहने लगे कि मुझे पहले तो क्षमा कीजिए कि मैंने ऐसे व्यक्ति को ऐसा वर दे दिया, और अब मेरी सहायता आप ही कर सकते। तो भगवान विष्णु वो एक ब्राह्मण के रूप में अपने आप को परिणित किया उन्होंने, और वो वृकासुर को उन्होंने बीच में रोका। वृकासुर अपना हाथ आगे किए हुए हिटलर के समान भाग रहा है, शिव जी के पीछे पीछे। तब फिर भगवान विष्णु ने रोका बृकासुर को, अरे तू कहां भाग कहां है। बृकासुर देखा सबसे पहले इतने सुंदर ब्राह्मण, हालांकि बृकासुर रुकने नहीं वाला था और कोई और हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि बृकासुर को रोक दे, क्योंकि फिर बृकासुर उसके हाथ पर उसके सर पर अपना हाथ रख देता। केवल भगवान विष्णु के अंदर यह साहस था कि बृकासुर को रोक सके। तो भगवान विष्णु ने रोका कि कहां भाग कहां रहे, तो सब कुछ बताया बृकासुर ने कि इनके पीछे भाग रहा हूं। तो भगवान विष्णु हंसने लगे और कहे कि अरे रे, तुम्हें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ऊपर सारे देवता देख रहे हैं तुम्हें, ये मत समझो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, ये सारे देवता देख रहे हैं तुम जो भाग रहे हो हाथ आगे कर कर। तो देख रहे हैं तो क्या देखने दो। भगवान ने कहा अरे नहीं, वो रुक रहे हैं कि जब तुम हाथ रखोगे शिव जी के सर के ऊपर तो हंसेंगे। तो क्यों हंसेंगे, ये कोई हंसने की बात है? हंसने की बात तो है क्योंकि तुम्हें वर ऐसे व्यक्ति से मिला है जिनके वर कभी काम करते नहीं। तो इनके वर कभी काम करते नहीं और ये सारे देवता जानते हैं कि शिवजी वर दिए हैं जिनके वर कभी काम करते नहीं, तो सभी तुम्हारी खिल्ली उड़ाने वाले हैं। ऐसा, अरे मैंने इतना सब कुछ अपने चमड़ी उखाड़ उखाड़ के डाली उसके अंदर और ये वर काम नहीं करते, मुझे तो किसी ने बताया था कि इनका दिया हुआ वर काम करता है। तो बृकासुर सबसे पहले उसे ढूंढने लगा जिन्होंने बताया था कि शिव जी की आराधना करो, उसके ऊपर पहले उसके सर पर हाथ रखो। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे किसके भी सर पर रखो, तो काम तो करने वाला नहीं और तुम्हारी खिल्ली उड़ेगी, जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया वो खिल्ली उड़ाएगा और बाकी सारे देवता जो तुम्हें देख रहे हैं वो खिल्ली उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अपने सर पर रख कर देख लो। तो बृकासुर जैसे असुर वो होते हैं ऐसे मूर्ख, और वो भी यदि भगवान विष्णु कुछ वाणी कहें तो फिर तो मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी उनकी होती है। तो इस मूर्ख बृकासुर ने अपने हाथ को अपने ही सर पर रखा और हुआ क्या, उसका सर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो यहां पर भगवान शिवजी का गुणगान इसलिए हुआ है कि भगवान शिवजी जानते हैं कि ये जो मेरा तथाकथित भक्त, ऐसा तमोगुणी भक्त और ऐसा असुर, और वो भी मेरा ही वध करने के लिए कर रहा है, परंतु भगवान शिव जी उसे भी वरदान दे रहे हैं, इसलिए कारुणिक कहा, ये गुण इनके अंदर। सुरद, सुरद का अर्थ है कि जो सबके मित्र हैं उसे कहते हैं सुरद। और यहां पर शिवजी वो न केवल साधारण जीवात्माओं के मित्र हैं, परंतु वो ऐसे जीवात्माओं के मित्र हैं जिनका संग कोई नहीं लेना चाहता, और सभी ऐसे जीवात्माओं से कोसों दूर भागना चाहते हैं। और वो कौन से जीवात्मा हैं? भूत प्रेत। यहां पर बैठे हुए कोई हैं जो भूत प्रेत से दोस्ती करना चाहेंगे? वो क्या कहते हैं, पेन फ्रेंड्स बनाते हैं ना लोग, पेन पाल, पेन फ्रेंड्स। तो कोई अभी तक बनाया है भूत प्रेतों से दोस्ती किसी ने की है? नहीं, कोई करना चाहेगा? परंतु ये जो भूत प्रेत सारे हैं इन्हें संभालते हैं भगवान शिव जी, क्योंकि और कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं और क्षमता नहीं कि इन्हें संभाल पाए। इसलिए भगवान शिव जी का ये नाम है भूतनाथ, कि न केवल वो सभी अन्य जीव भूत के नाथ हैं, बल्कि वो भूत प्रेत इन सब भगवान शिव जी वो बड़े बड़े भगवान के पार्षदों के साथ भी रहते हैं, जैसे नारद मुनि इत्यादि, ब्रह्मा जी नारद मुनि इत्यादि, और उनके काउंसिलिंग ग्रुप में ये सब भी है। शिव जी के काउंसिलिंग ग्रुप में ये सब भी हैं। कौन कौन? भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनिया, राक्षस। सोचिए कि इनके साथ मीटिंग करना, वो मीटिंग कैसे रहेगी? इनको कुछ उपदेश देना या प्रवचन देना, पहले तो दिखाई देने चाहिए। मानो एक सत्संग कार्यक्रम रखा है भूत पिशाचों के लिए, तो सबसे पहले तो जो प्रवचनकार है उसे समझ में नहीं आएगा कि कोई आया कि नहीं, और वो आएगा भी तो पता नहीं वो कहां पर रहेगा और करेगा क्या। तो वो कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि वो प्रवचनकार की शिका खींचने लग जाए पीछे से, और उसे समझ में नहीं आए कि ये श्रोता है आज के। तो ऐसे जो जीवात्मा हैं, ऐसे भूत जो हैं, इनके उद्धार हेतु इन्होंने स्वयं स्वेच्छा से ये सेवा ली है। तो इसलिए सुरद ये गुण है भगवान शिव जी का। अजात शत्रव एवं शांत। अजात शत्रु का अर्थ है कि जिनका कोई शत्रु नहीं। सुरत तो एक बात है, इसके साथ साथ कोई भी शत्रु जिनका नहीं है वो व्यक्ति है अजात शत्रु और शांत। और इसमें हम दक्ष यज्ञ की कथा लेंगे कि दक्ष प्रजापति जो कि शिवजी के कौन थे? ससुर, शिवजी के ससुर, परंतु कट्टर दुश्मन शिव जी के। और दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम क्या? सती, माता सती। तो माता सती ये दक्ष प्रजापति की पुत्री, और योगवश माता सती का विवाह शिव जी से हुआ, जो कि दक्ष प्रजापति को बिल्कुल रास नहीं आया, उनके अनुसार नहीं, उनको ये दामाद पसंद ही नहीं आया। और वो अक्सर कहा करते हैं, क्या ये कौन सा दामाद मिला है, दूसरों को यदि बताऊं भी तो मेरी बेटी की शादी किससे हुई है? हाथ में डमरू, त्रिशूल और सर्प और स्मशान भूमि की भस्म और केवल मृग छाल ये पहना हो, और रहने के लिए भी कोई घर नहीं, केवल पहाड़ों पर। तो दक्ष प्रजापति वो बहुत ईर्ष्या करते थे शिवजी से। तो दक्ष यज्ञ जब हुआ तो दक्ष यज्ञ में सभी बड़े बड़े देवतागण वहां पर उपस्थित थे और शिवजी भी। और हालांकि शिवजी वो दक्ष प्रजापति से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े पद पर हैं वो, भगवान का जो गवर्नमेंट है, भगवान की सरकार में भगवान शिवजी को सबसे ऊंचा पद मिला है, गुण अवतार है वो। और दक्ष प्रजापति तो केवल एक ब्रह्मा जी के एक पुत्र, एक प्रजापति जैसे हैं, परंतु दक्ष प्रजापति का अहंकार इतना बड़ा कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सभी देवतागण खड़े हुए, परंतु भगवान शिव जी को कोई आवश्यकता नहीं थी खड़े होने की। और ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी ये देखते हुए खड़े नहीं हुए कि ये तो केवल एक प्रजापति है, ये क्या है मेरे सामने, ये कारण नहीं था कि शिव जी खड़े नहीं हुए उनका आदर करने के लिए। परंतु भगवान शिव जी वो हर समय समाधस्थ रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो भगवान शिव जी अपने ध्यान में थे भगवान के, परंतु दक्ष प्रजापति वो क्रोध में आ गए। इसे ये जो अहंकार का लक्षण होता है, अहंकार का लक्षण क्या है कि जब 100 लोग आपका आदर कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जाता उसका, एक व्यक्ति उन 100 में से यदि एक व्यक्ति ने मेरा आदर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। जैसे कई बार जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो कई लोग यदि हमारे साथ बैठे हैं, हमारे प्लेट में 56 होगा भोग और बगल वाले के प्लेट में 56 से ज्यादा कुछ एक और रख दिया किसी ने, चाहे वो किसी गाजर का टुकड़ा हो या मूली का या सलाद हो या कुछ भी हो, उस पर नजर जाएगी, वो नहीं दिया। तो दक्ष प्रजापति, इतने लोग आदर कर रहे हैं परंतु ये क्यों नहीं, और वो भी मेरा दामाद जमाई, ये क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। तो गाली गलौज शुरू कर दी दक्ष प्रजापति ने वहां पर, परंतु भगवान शिव जी वो तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। अब भगवान शिव जी, उनका एक और नाम है रुद्र। जैसे वो आशुतोष हैं वैसे वो रुद्र भी हैं, कि जितनी जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं उतनी जल्दी उनके अंदर क्रोध भी आ सकता है, और अक्सर उनकी जो तीसरी आंख है बीच में, वो उसी समय उसका शटर खुलता है। कामदेव, शिवजी वो ध्यान एक बार कर रहे थे तो कामदेव आ गए, और कामदेव ने आकर अलग अलग अप्सराओं को लाकर शिवजी को प्रलोभित करने के लिए, शिवजी के अंदर काम वासना जागृत करने के लिए प्रयास किया। तो शिवजी वो देखे कि कौन ये आवाज कर रहा है, तो ये कामदेव बीच बीच में आकर अपना बाण छोड़ने लगे, काम बाण और ये सब कुछ छोड़ने लगे। तो भगवान शिवजी अपने साधना में जब ये सब अवरोध देखा तो उन्होंने अपना तीसरी आंख खोल दी, कि तीसरी आंख वो एक मिसाइल के जैसे निकला यहां से और खत्म, कामदेव वहां पर ही उनका काम तमाम हो गया। तो यहां पर शिवजी क्रुद्ध हुए, क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति में अवरोध ये डाल रहा था कामदेव। परंतु यहां पर जब दक्ष प्रजापति व्यक्तिगत रूप से कुछ कह रहा है शिवजी को, तो शिवजी उसे कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो किसी के भी शत्रु नहीं है, एक तो ये, और दूसरा गुण शांत है। कि शिवजी का ये गुण है कि जैसे समुद्र, समुद्र में चाहे कितना भी कोई हलचल मचाने का प्रयास करे, समुद्र वो अपनी शांतता नहीं छोड़ता, तो शिवजी की तुलना ऐसे शांत समुद्र से भी की गई है। और साधवः, ये इस श्लोक का अंतिम गुण साधु का लक्षण है, साधव। साधव का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो अपने साधुत्व को कभी छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसके प्रति, चाहे कितनी भी विपत्तियां आए उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से, परंतु वो अपने साधुत्व को छोड़ता नहीं। और ये कथा है श्रीमद् भागवत में, संक्षिप्त रूप में इस कथा का वर्णन हुआ है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से इस कथा का वर्णन है कि दक्ष प्रजापति, यहां पर भी दक्ष प्रजापति, कि दक्ष प्रजापति ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह किया चंद्रदेव, सोमदेव। तो सोमदेव का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों के साथ, और इनमें से सोमदेव की एक बहुत चहीती पत्नी थी, इसका नाम था रोहिणी। तो वो फेवरेट थी चंद्रदेव की, तो इसलिए चंद्रदेव अपना सारा ध्यान समय जो कुछ उनकी आमदनी सब कुछ पगार वगैरह सब लाकर रोहिणी को सब कुछ मिलता। तो बाकी जो 26 पत्नियां चंद्रदेव सोमदेव की वो ईर्ष्या में चली गई कि ये क्या है, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे पतिदेव। तो उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष प्रजापति को शिकायत की कि थोड़ा आपके जमाई को देखिए ये क्या कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति वो क्रोधित हो गए, दक्ष प्रजापति तुरंत उनका फ्यूज उड़ जाता है, तो तुरंत क्रोधित हुए और जाकर सोमदेव को श्राप दे दिया। श्राप ये दे दिया कि तुम धीरे धीरे कम होते रहोगे, तुम्हारी रोशनी में, तुम्हारी आयु में, जो भी तुम्हारा तेज है उसमें धीरे धीरे कमतरता आने लगेगी तुम्हारे अंदर हर दिन। इसलिए हम देखते हैं कि चंद्र जो है वो हर दिन कम होता रहता है और फिर चंद्र अगले 15 दिन हर दिन उसमें बढ़ोतरी होती है। पहले कटौती होती है फिर बढ़ोतरी होती है, अंग्रेजी में उसे वैक्सिंग एंड वेनिंग कहते हैं। तो ये श्राप मिला तो चंद्र जब ये श्राप मिला तो चंद्रदेव तुरंत वो सोचे कि अब मैं अपने आप को इस दुविधा से बाहर कैसे निकालू। तो शिव जी के पास गए, तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा कि चिंता मत करो। तो शिव जी भी जमाई दक्ष प्रजापति की, तो एक जमाई दूसरे जमाई के पास जा रहे हैं। तो यहां पर शिव जी ने चंद्र इन्हें अपनी जटा पर धारण किया, इसलिए आप देखोगे कि शिव जी के जटा पर चंद्र है, अर्धचंद्र, क्योंकि उस दशा में ही वो गए थे। पूरा कटौती इतनी हो गई तुरंत कि वो केवल उतने से बने रहे तो भाग भाग कर गए इतने से बने हुए शिव जी के पास कि अरे कुछ कीजिए, नहीं तो ये तो मेरा अस्तित्व ही जाता रहेगा। तो फिर शिव जी ने अपनी जटा पर धारण किया और कहा कि बस यहां पर कोई आकर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, यदि बाल है तो बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अब ये जब शरण दे दी शिव जी ने तो शिव जी को एक नाम मिला चंद्रशेखर, ये शिव जी का एक नाम है चंद्रशेखर, कि जिन्होंने अपने जटा पर अपने शिखर पर चंद्र को धारण किया है वो है चंद्रशेखर। तो अब ये बाकी पत्नियां इन्हें लगा कि भाई हमारे पिताजी ने तो बहुत ज्यादा ही कुछ कर दिया, हमारे पति लापता, अभी वो यहां वहां ढूंढ रही हैं बाकी सब पत्नियां, विशेष रूप से रोहिणी जो उनकी चहेती, वो सभी ढूंढ रही हैं कि हमारे पति गए कहां। तो सारे ब्रह्मांड में खबर फैलाई कि किसी ने देखा हमारे चंद्र गए किधर, गायब हो गए, अपन जानना पायलट का। एक कार्यक्रम आता था ना उनके विषय में बताया, फिर उनका वर्ण कैसा है, अरे एकदम उजले उजले वर्ण के। तो फिर वो पूछने लगे कि कहां कहां किसी ने देखा, तो दक्ष प्रजापति के पास गए कि अभी आप ही ढूंढिए, अभी आपने हमारा विवाह करवाया है चंद्र से और अभी आपने ही श्राप दे दिया और वो लापता है, तो आप ढूंढिए। तो दक्ष प्रजापति ढूंढते ढूंढते पता लगा कि पता कहां है, एक तो कैलाश में, सबसे पहले जब पता लगा कि कैलाश में तो तुरंत कैलाश में मेरे दूसरे शत्रु के पास पहुंच गया ये, और वो भी वहां पर महादेव की जटा के ऊपर। तो दक्ष प्रजापति क्रोधित अवस्था में वहां पर पहुंचते हैं, परंतु शिवजी जैसे ही दक्ष प्रजापति को देखते हैं तो शिवजी अपना दंडवत देते हैं दक्ष प्रजापति को, और दंडवत इसलिए कि दंडवत देने के द्वारा शिवजी अपने जटा को नीचा करेंगे तो थोड़ा दक्ष प्रजापति को दिखाएंगे यहीं पे देखो। तो दंडवत किया और दंडवत कर हाथ जोड़कर शिवजी वो दक्ष प्रजापति से पूछते हैं दासोस्मी कि ससुर जी बताइए क्या सेवा आपकी हम करें। तो दक्ष प्रजापति वो बहुत प्रसन्न हो गए शिवजी की ऐसी नम्रता देखकर और वो खुश हो गए, हाँ ठीक है तुम सही, अब ससुर को कैसे आदर दिया जाता है तुम सीख रहे हो। तब फिर दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये जो ये दूसरा जमाई मेरा जो है ना ऊपर जटा पर अभी उसने अपना डेरा जमाया है वो उसे वापस दो, मेरी सारी पुत्रियां मांग रही है वापस। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, जिसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है उसे मैं नहीं छोड़ सकता। तो दक्ष प्रजापति तुम फिर अपनी बातें करना शुरू कर दी, अभी दंडवत किया क्षमा याचना ये सब कुछ चल रहा था। तो शिवजी ने कहा वो तो मैं केवल आपका जमाई हूं इसलिए कर रहा था, परंतु ये सब बात मांगोगे कि ये चंद्र को वापस दे दो, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि मैं वचन दे दिया हूं चंद्रदेव को कि मैं रक्षा करूंगा, तो मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता, प्राण जाए पर वचन न जाए, आप जाए। तो दक्ष प्रजापति क्रोधित अवस्था में, तो जब क्रोध में वो दक्ष प्रजापति अब वहां पर फिर से एक घमासान युद्ध शुरू होने वाला होना, जब देखा कि युद्ध शुरू होने वाला है तो भगवान विष्णु आ गए, भगवान रेफरी के रूप में, अरे अरे अब कि दोनों को दोनों की रक्षा करनी है भगवान को। तो भगवान विष्णु ने शिवजी से कहा कि भाई क्या है दे दो इनको वापस, वो पत्नियों के पास जाना ही है ना, वो क्या अकेली थोड़ी रहेंगे। तो भगवान शिवजी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता कि उनके वजह से ये चंद्रदेव मेरे समक्ष आए और शरण ग्रहण किए हैं नहीं। तो फिर भगवान विष्णु ने कॉम्प्रोमाइज करवाया कि भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है जो श्राप दिया है दक्ष प्रजापति ने वो श्राप के अंदर कोई वरदान मैं डालता हूं कि हर 15 दिन में जो चंद्र है ये पूर्ण प्रकार से तेजस्वी अपना तेज फैलाएगा, पूर्णिमा का चांद बनेगा, और फिर उसके अगले 15 दिन या 15वें दिन वो अमावस्या। तो इस प्रकार से जब भगवान विष्णु ने कॉम्प्रोमाइज करवाया तो फिर भगवान शिव जी ने कहा कि क्योंकि आप मेरे आराध्य देव हैं, आप मैं आपकी शरण में हूं और आप इसका उत्तरदायित्व ले रहे हैं, इसलिए आपके कहने अनुसार मैं चंद्र को वापस लौटाता हूं। तो यहां पर भगवान शिव जी उन्होंने जो वचन दिया उस वचन से वो मुकरे नहीं, इसलिए वो एक साधु का गुण, जो साधु का गुण है कि जो अपने वचन से च्युत नहीं होता, वचनबद्ध रहता है, ये गुण शिव जी ने यहां पर दिखाया। और शिव चरित्र किस प्रकार का है कि कौन कौन से और अन्य गुण हैं शिव जी के अंदर जिनके कारण शिव जी इन्हें महादेव कहा गया है या सबसे बड़े वैष्णव परम वैष्णव, सबसे पहले इनकी सेवा भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, ये है धाम रक्षक। और जब भी भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और अपनी लीला करते हैं किसी भी धाम में तो भगवान शिव जी वहां पर प्रकट होते हैं और उस धाम की रक्षा करते हैं, जैसे कि वृंदावन में भगवान शिव जी ब्रज मंडल में धाम रक्षक कौन कौन से रूप में है कोई जानता है? हाँ, गोपेश्वर महादेव और चकलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव की जो नंदग्राम जहां पर कृष्ण बलराम का मंदिर है, तो शिवजी ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं ब्रह्मा जी और उद्धव जैसे एक घास का तिनका वो बने हैं आपके धाम में, तो मैं भी कुछ ऐसा ही ब्रज का कण बनना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम ब्रज के कण नहीं बल्कि पूरा पर्वत बनोगे। तो भगवान कृष्ण ने शिवजी को एक बड़ा पर्वत बना दिया, नंदीश्वर पर्वत, और भगवान ने कहा कि इस पर मैं अपने आप को अपना मंदिर स्थित करूंगा। तो ये अलग अलग जगह पर मथुरा मंडल में गोवर्धन का जो मंडल है वहां पर चकलेश्वर महादेव, और नंदग्राम गोकुल में वहां पर नंदीश्वर, और मथुरा में भूतेश्वर महादेव। तो इस प्रकार से धाम रक्षक हैं भगवान शिव। इसलिए मुंबई में जो हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर है उसके बगल में भी बाबुलनाथ, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि धाम रक्षक के रूप में भगवान शिव जी पहले से ही अपने आप को प्रकट किए हैं। तो ये इनका एक गुण है, ये इनकी एक सेवा है। भगवान श्री कृष्ण की लीला जब भी होती है तो वो रक्षक के रूप में, और इनका एक विशेष गुण है कि अन्य कोई भी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की जो बहुत उच्च कोटि की जो माधुर्य लीला है उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहां तक कि लक्ष्मी देवी प्रवेश नहीं कर सकी भगवान की रास लीला में, परंतु शिवजी इन्हें प्रवेश मिला। और शिवजी कौन से रूप में रास लीला में उन्होंने भाग लिया? एक गोपी के रूप में। तो शिवजी एक गोपी में परिणित हुए और इसलिए वो गोपीश्वर महादेव वृंदावन में वो विख्यात हुए। तो सबसे उच्च कोटि की जो लीला भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी इनको भी प्रवेश नहीं, भगवान शिव जी वो प्रवेश कर सकते हैं। और इनके चरित्र के विषय में कहा गया है कि ये जो सेवाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु, सबसे कठिन से कठिन सेवाएं वो भगवान शिव जी को देते हैं। जैसे कि जब भगवान श्री बुद्ध अवतरित हुए, और भगवान श्री बुद्ध अवतरित हुए जो मांसाहार और पशु हत्या चल रही थी उसे रोकने के लिए, तो हिंसा रोकने के लिए जब भगवान बुद्ध अवतरित हुए तो उन्होंने सबसे पहले वेद शास्त्र को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वेद शास्त्र के नाम पर लोग और ब्राह्मण पशु हत्या करवा रहे थे। तो एक प्रकार का नास्तिकवाद फैल गया, तो इसलिए अब पुनः शास्त्र को स्थापित करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने शिवजी को भेजा कलयुग में शंकराचार्य के रूप में, और वो भी शिवजी को ये कहा कि जाकर प्रचार करो कि मैं निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म हूं, क्योंकि अभी जो लोग हैं कलयुग के वो मेरे साकार रूप को नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिए शिवजी को ये सेवा दी गई कि भगवान के साकार रूप को नाकार कर उनके निर्विकार रूप का प्रचार करना, या निर्विकार अस्तित्व का प्रचार करना। तो ये बहुत कठिन सेवा, जो एक परम वैष्णव है ये इस प्रकार की सेवा बहुत कठिन सेवा है उसके लिए, परंतु भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने इस सेवा को स्वीकार किया। और जैसे हमने चर्चा की कि जो तमोगुणीय भूत पिशाच हैं, इनकी रक्षा या इनकी देखरेख ये सब भगवान शिवजी ही लिए हैं, और किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं। इसलिए जब भी कठिन से कठिन सेवा होती है, जैसे कि तीनों जो गुण अवतार हैं उसमें सबसे कठिन सेवा भगवान श्री विष्णु की है, संहार। और कोई चाहता नहीं कि सृष्टि का संहार हो, परंतु ऐसी कठिन सेवा केवल भगवान शिव जी कर सकते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को नियुक्त किया है इन सब सेवाओं के लिए। तो उनके चरित्र में ये एक बहुत ही प्रमुख गुण है कि भगवान की कठिन से कठिन सेवाएं भगवान शिव जी लेते हैं। और उनके चरित्र का एक और बहुत विशेष गुण है उनके परिवार के संदर्भ में, शिव परिवार। तो जो भी पारिवारिक भक्त हैं आज यहां पर, आप लोग सब ये सीख सकते हैं कि परिवार में सुख शांति किसे सीखनी है हमें, शिव परिवार से। और शिव परिवार में सुख शांति कैसे दिखती है बहुत ही रोचक तरीके से बताया गया है कि शिव परिवार में कौन कौन है, शिव जी, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय। तो यदि हम इनको लें, हम दो हमारे दो, यदि हम इनको लें इन चारों को, तो ये चार साधारण नहीं है, ये अपने आप में बड़े बड़े देव हैं। ये सबसे पहले तो महादेव, और फिर स्वयं दुर्गा देवी, और फिर गणेश जी तो आप लोग सब जानते हैं, और सभी देवताओं के प्रमुख सेनापति हैं कार्तिकेय। तो ये अपना अपना वाहन भी है इनका, सबका अपना अपना कार है। तो शिव जी का वाहन कौन सा है, नंदी, नंदी नाम हुआ बैल, तो बैल है वो शिव जी का वाहन है। और पार्वती, दुर्गा देवी, इनका वाहन क्या है, सिंह, तो ये इनका वाहन। गणेश जी का वाहन तो सब जानते हैं, चूहे मिया। और कार्तिकेय, मोर। तो अब यदि हम देखें कि ये एकत्रित सब कैसे रहते हैं, कि यदि शिव जी के पार्किंग लॉट में आप जाओ, शिव परिवार के पार्किंग लॉट में जाओ, तो वहां पर कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, बैल, बैल के बगल में सिंह, सिंह के बगल में चूहा, चूहे के बगल में मोर। तो यदि इन प्राणियों की भी हम लें, तो जंगल में अक्सर क्या हम देखते हैं कि बैल को कौन खाता है, सिंह, और चूहे को कौन खाता है, सर्प। तो भगवान शिव जी के चारों तरफ सर्प रहते हैं, तो ये सर्प चूहे को खाता है, और सर्प को कौन खाता है, मोर। तो यदि हम केवल इन प्राणियों को ही लें, तो इनके अंदर विरोधाभास है, ये एक दूसरे को मारने वाले सभी प्राणी हैं। परंतु हम देखते हैं कि क्योंकि शिवजी इन सब के प्रमुख हैं, तो कभी भी ये सभी प्राणियों में कभी कोई बैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई झगड़े नहीं। तो सोचिए, ये प्राणी आपस में जो शत्रुता रखते हैं, शिवजी के वजह से शत्रुता नहीं। और अक्सर हम क्या देखते हैं कि घर में आजकल लोग प्राणियों की तरह लड़ रहे हैं, जानवरों की तरह लड़ रहे हैं घरों के अंदर। तो यहां पर जानवर हैं, परंतु वो सबसे सुशील पारिवारिक सदस्य की तरह रह रहे हैं। क्यों, भगवान शिवजी के कारण। तो शिव परिवार के अंदर जो ये मैत्री, ये जो सुख शांति, ये सब हमें सीखनी है, इसलिए ये एक बहुत विशेष गुण है इनके पूरे परिवार का। और परम विरक्त भगवान शिव जी हैं, परम विरक्त। ये घटना है कि भगवान शिव जी, वो उनका धाम तो कैलाश धाम है, और कैलाश धाम में वो केवल पेड़ों के नीचे अपनी ध्यान ध्यानस्थ अपनी अवस्था में रहते हैं, कोई उनका घर नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, ये सब वाहन तो इनके ये सब हैं। तो एक बार पार्वती देवी वो आई शिव जी के पास और पार्वती देवी ने कहा कि महादेव, इतने साल हो गए हमारे शादी के, कम से कम एक घर तो बनाओ ताकि हम एक दूसरों को बता सकें कि हमारा एड्रेस क्या है। लोग पूछते हैं कि हम आपसे मिलने के लिए कहाँ आए, तो एड्रेस क्या देना पड़ता है? कैलाश धाम में कोई भी पेड़ के नीचे ढूंढ लेना, मिल जाएंगे। कोई बरगद के पेड़ के नीचे, कोई बेल के पेड़ के नीचे, कहीं पर तो मिल जाएंगे। तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं, ईमेल एड्रेस वगैरह तो दूर की बात है, तो घर का ही कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है हमारा, तो घर ही नहीं तो एड्रेस क्या? तो कम से कम एक घर तो बनाओ। तो फिर शिवजी ने कहा, अरे घर बनाएंगे फिर उसका मेंटेनेंस और फिर क्या क्या नहीं उसमें समय बिताना पड़ेगा, अपनी साधना भंग हो जाएगी। तो फिर बहुत कहने के बाद शिवजी राजी हो गए कि ठीक है कि घर बना लेते हैं। ठीक है, तो शिवजी ने पहली दफा अपने लिए नहीं, क्योंकि पार्वती ने कहा इसलिए, घर बनवाया और बहुत सुंदर विश्वकर्मा द्वारा रचित एक बहुत सुंदर सा घर, महल जैसा, और इसका समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैला कि उनका घर बन रहा है और आर्किटेक्ट विश्वकर्मा। तो सभी प्रतीक्षा में थे कि कब पूरा होगा, कि हम गृह प्रवेश में जाकर देखेंगे कि शिवजी का घर कैसा रहेगा, ड्राइंग रूम कैसा रहेगा, किचन कैसा रहेगा। तो सभी लोग इतने आतुर थे। तो फिर जैसे ही घर तैयार हुआ तो अब गृह प्रवेश के लिए पार्वती देवी ने अब सबको न्योता भेजा एड्रेस के साथ कि ये एड्रेस है और यहाँ पर आप लोग सब आइए, गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। तो सभी आए और भगवान शिव जी जो कि कारुणिक कृपालु, तो जो जो आ रहे थे भगवान शिव जी सबको भेंट दे रहे थे। तो सारे ऋषि मुनि पहुंच गए कि बड़ा भंडारा होगा, अरे शिव जी के गृह प्रवेश का कार्यक्रम है तो बड़ा भंडारा होगा। तो सारे ऋषि मुनि, साधु ब्राह्मण सभी पहुंच गए। तो भगवान शिव जी सबको अलग अलग प्रकार की भेंट दे रहे थे। तो सब कुछ हो गया, अंत में एक साधु बच गए और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा लेट आया और मुझे पता लगा कि यहाँ पर आप सबको भेंट दे रहे हैं, गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, तो मेरे लिए कुछ बाकी है कुछ। तो भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखो कुछ बाकी है कुछ इन्हें साधु को भेंट देने के लिए। तो पार्वती देवी, नया नया घर, इतना फर्नीचर भी कुछ था नहीं ज्यादा, तो जाकर वो अंदर जाकर ढूंढ कर आकर बोलती हैं कि जो कुछ था वो तो सब आपने बांट दिया, अब तो कुछ है नहीं। तो शिव जी ने कहा, अरे है कैसे नहीं, ये घर है ना इतना बड़ा, देखो चलो। तो वो जो अंतिम वस्तु बाकी थी वो घर, वो सारा घर उनको देख, और पार्वती से कहा चलो फिर से पेड़ के नीचे। तो ये इनका गुण है कि परम विरक्त। हालांकि इनके जो जो शिष्य हुए, जैसे रावण जिसने सोने की लंका खड़ी कर ली, परंतु भगवान शिव जी ऐसा नहीं कि रावण को कहा कि अरे वो उसमें एक मेरा भी गेस्ट हाउस बनाना लंका में। भगवान शिव जी परम विरक्त, हालांकि सबको इतने वरदान देते हैं परंतु वो परम विरक्त हैं भगवान शिव जी। और अंतिम उनका चरित्र, उनका गुण है कि वो है आशुतोष, जिसका अर्थ है कि वो प्रसन्न बहुत ही सरलता से हो सकते हैं, परंतु उन्हें प्रसन्न करने का तरीका क्या है, उन्हें प्रसन्न करने का तरीका है जब हम भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु की आराधना में लगते हैं और भगवान श्री शिवजी से भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की भक्ति मांगते हैं, इसमें उन्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। क्योंकि उनका ज्यादा समय तो इसी में जाता है, ये भूत पिशाच बृकासुर रावण बाणासुर इन सारे अलग अलग आइटम से डील करने में। इसलिए जब कोई शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का भक्त भगवान श्री शिव के समक्ष जाकर उनसे उनके परम आराध्य देव भगवान श्री विष्णु की भक्ति मांगता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान शिव जी उससे। इसलिए उन्हें आशुतोष कहा गया है और हमें भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री शिव जी के समक्ष जाना है इसी धारणा से कि उनसे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगनी है। क्योंकि पंचमुखी कहा गया है, शिव जी का एक और नाम है पंचमुखी महादेव। जैसे कि ब्रह्मा जी हैं चतुर्मुखी, परंतु शिव जी वो पंचमुखी है, पांच मुंह हैं उनके और अपने पांचों मुंह से भगवान शिव जी हर समय क्या करते रहते हैं, वो हर समय महामंत्र का जाप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय उनके मुख से उनके प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण का ही नाम उच्चारण होता रहता है। इसलिए हमें शिवरात्रि के अवसर पर और ऐसे भी हमारी साधना भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रगति करने के लिए भगवान श्री शिव जी के समक्ष जाकर उनसे उनके आराध्य देव जो हैं उनकी कृपा याचना करते हुए उन्हें प्रसन्न करते हुए हमारी साधना भक्ति में हमें आगे बढ़ना है। बोलो भोलेनाथ शंभु महादेव भगवान की, भगवान शिव जी की, वैष्णवानाम यथा शंभु की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले वो है प्रसादम कूपन्स की अनाउंसमेंट। तो प्रसादम कूपन्स जो प्रोग्राम 7:30 बजे शुरू होता है, वैसे 7 बजे आरती से प्रोग्राम शुरू होता है, इन 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक प्रसादम कूपन्स बांटे जाएंगे। और सभी भक्तों से ये भी निवेदन है कि अगर उनके साथ कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी प्रसादम कूपन्स लेना है, और अगर बच्चों के लिए कोई प्रसादम कूपन्स नहीं लेता है तो उसके लिए भी 10 रुपए फाइन लगेगा। तो ये सब ने नोट कर लेना है कि 8 बजे तक, 7:30 से लेके 8 बजे तक, अगर 8 के बाद अगर कोई आएगा तो उसे 10 रुपए प्रसादम कूपन्स के लिए चार्ज देना पड़ेगा। अगली अनाउंसमेंट ऐसी है कि जो पार्किंग है, तो इसके पहले भी बहुत बार ऐसे अनाउंसमेंट हुई है पार्किंग के बारे में कि सभी भक्तों ने पार्किंग जो है मंदिर के पीछे जो ओपन स्पेस है भक्ति वेदांत के बाजू में, तो वहां पे पार्किंग करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे कंप्लेंट्स आए, हमारे जो पड़ोसी है वहां से कंप्लेंट्स आए हैं कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तो कृपया सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने जो व्हीकल्स है तो वो मंदिर के पीछे के साइड में पार्किंग कर दिया जाए। और पिछले बार भी अनाउंसमेंट ऐसा किया गया था कि जो IYS यात्रा है, यूथ यात्रा 27 जून से लेके 6 जुलाई तक जाने वाली है, तो जिस किसी भक्तों को उसमें अपना नाम देना है या उसका कुछ लक्ष्मी जमा करना है तो कृपया करके उन्होंने भक्त निखिल प्रभु से संपर्क करना है और उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1200 रुपए है, तो वो निखिल प्रभु के पास जमा करना है। और इसके बाद मैं जो भक्त इस कार्यक्रम के लिए पहली बार उपस्थित हुए हैं तो उन सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि कृपया करके 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं यहाँ पे और उन सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि कीर्तन होने के बाद यहाँ पे नवरत्न प्रभु रहेंगे तो कृपया करके उनसे मिले। नवरत्न प्रभु तो नरोत्तम प्रभु से मिले और इन सभी भक्तों का हम स्वागत करेंगे और उनके लिए उनके भक्ति में जीवन के लिए प्रार्थना भी करेंगे कि वो ऐसे ही हमारे रविवार के और हर जो प्रोग्राम है उनके लिए आए। जैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे हर बुधवार के दिन भगवद गीता हिंदी के लिए प्रवचन होता है, शुक्रवार के दिन इंग्लिश में प्रवचन होता है, शनिवार के दिन सौजन्य बंगलों में प्रवचन होता है और रविवार के दिन यहाँ पे जैसे आप आज पधारे हैं ऐसे प्रवचन होता है। तो सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया आप बारम्बार आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। तो हम इन सभी भक्तों का स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं और कृपया करके जाने कीर्तन के बाद मुझे आके मिले या बाहर नरोत्तम प्रभु रहेंगे उनसे मिले। हरे कृष्ण।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरानिता 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 जय गौरानिता, हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते, शरीर विद्याजा जोड़ेन्द्रिय ताहे का जीवे से ले विषय सागरे, तारमधि जिहरती लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे।